मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 20 मार्च 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं पारस सिंह, आप जोधपुर राजस्थान से हैं, प्रदीप कुमार, आप पटना बिहार से हैं, और सुबोध कुमार सिंह, आप बक्सर बिहार से हैं। तो पारस, प्रदीप और सुबोध, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं न्यूज एनालिसिस पर और इसकी शुरुआत करते हैं कल की आकाशवाणी के समाचार से। मुझे कहने के लिए माफ कीजिएगा कि मुझे उम्मीद है कि आप सबने जरूर आकाशवाणी के समाचार सुने होंगे। माफी इसलिए मांग रहा हूं मित्रों क्योंकि एक सप्ताह में 5 दिन तो मैं न्यूज एनालिसिस करता ही हूं और उसमें एक दो बार मेरे मुंह से निकल जाता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समाचार सुने ही होंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसी बात को लेकर के थोड़े से भड़क जाएं कि क्या हम बिना सुने ही आपका ये न्यूज एनालिसिस सुनते हैं, इसलिए मैंने माफी मांगी है। और सच पूछे तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों को याद दिलाता रहता हूं कि प्लीज न्यूज जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप न्यूज नहीं सुनेंगे तो फिर इस न्यूज एनालिसिस को सुनने का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रहेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि अर्थ रह ही नहीं जाएगा, अल्टीमेटली किसी हम टॉपिक को लेकर के बातें करते हैं और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन अगर आपको 100% फायदा उठाना है तो न्यूज भी सुनिए, और अगर 75% ही फायदा उठाना है तो फिर इससे भी बात बन जाएगी, लेकिन सफलता तो 100% में ही मिलेगी। तो दोस्तों, कल के न्यूज में मैं 2 बातें इंपॉर्टेंट रूप से अंडरलाइन करना चाहूंगा। पहला तो आपने इस बीच में देखा कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर बनाए जा चुके हैं। खैर, कौन चीफ मिनिस्टर बना, क्या बना, उसके पीछे क्या राजनीति है, वो हमारे सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन जो पॉलिटी है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह डेफिनेटली हमारे सिविल सर्विस का हिस्सा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों जगह बहुमत आया, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आई और उसमें बहुमत दल के नेता को ही चीफ मिनिस्टर बनना था और आराम से बन गए। तो आप देखेंगे कि उसको लेकर के कहीं किसी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट नहीं है, जैसा कि मणिपुर और गोवा में हुआ। तो अब पॉलिटी की बात मैं थोड़ी सी जरूर आप लोग शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस तरह के पॉलिटी पर काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं। पॉलिटी की बात इसमें यह है मित्रों कि देखिए, सामान्यतः क्या होता है, आपने अखबारों में शब्द सुना होगा हाईकमान। हाईकमान मतलब जो केंद्र में बैठे हुए जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं वो हाईकमान है, सर्वोच्च सत्ताधारी, सर्वोच्च अधिकार प्राप्त वर्ग कह लीजिए, हाईकमान है। हर पार्टी में ऐसा वर्ग होता है। तो राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो अक्सर ज्यादातर मामलों में यह देखा गया था कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जो नेशनल लेवल की पार्टियां जैसे कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, तो होता यह है कि जो हाईकमान है वो राज्यों के चुनाव के बाद ये डिसाइड कर देती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और फिर जो राज्य के जो एमएलएज हैं जो चुनकर के आए हैं वो उस नाम को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब हाईकमान अपने कंट्रोल में रखता है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, तो बट नेचुरली कि वो जो चीफ मिनिस्टर होगा वो हाईकमान के का विश्वसनीय होगा और वो हाईकमान के नेतृत्व में या कह लीजिए हाईकमान के निर्देशन में वो अपने राज्य का कामकाज देखेगा। वहां एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो एमएलए चुनकर के आए हैं, अब उन एमएलए को ये इनका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है, मतलब इन्हें चीफ मिनिस्टर मानना पड़ता है, भले ही इनको ये बहुत अच्छे से न जाने, इनके बीच के व्यक्ति न हो, इनके साथ इनका बहुत अच्छा तालमेल न हो, लेकिन जो कि अब हाईकमान का आदेश है तो वो मानने को बाध्य होते हैं। ये एक पैटर्न है जो कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक चलता रहा है, और सच पूछे तो ये कांग्रेस की जो आज स्थिति दिखाई दे रही उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी माना जाता है। उसके पीछे कारण यह था कि जो कांग्रेस हाईकमान है वो ये मान करके चलती है कि अगर किसी चीफ मिनिस्टर को वहां के एमएलए चुनेंगे तो वो चीफ मिनिस्टर शक्तिशाली होता चला जाएगा, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, हाईकमान के कंट्रोल में तो नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो चीफ मिनिस्टर इतना शक्तिशाली होता चला जाए कि आगे चल करके वो प्रधानमंत्री पद का ही दावेदार बन जाए। फिर हम उस पर नियंत्रण कैसे रखेंगे। तो इसीलिए सामान्यतः होता है कि हाई कमान अपने कंट्रोल में रखना चाहता है कि नहीं हम अपने कंट्रोल में रखें। उसका नतीजा यह होता है कि राज्य में कोई नेतृत्व उभर नहीं पाता। राज्य में जो नेतृत्व उभरना चाहिए जनता के बीच से, वो नहीं उभर पाता क्योंकि एक थोपा गया नेतृत्व वहां दे दिया जाता है। पंजाब के चुनाव को आप देखिए कि पंजाब के चुनाव में अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छा बहुमत लेकर के आए और वो कांग्रेस पार्टी से है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सत्ता वहां नहीं रही है। तो वहां का अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि चूंकि जो हाईकमान है, हाईकमान ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को फ्रीडम दी, उसका नतीजा यह हुआ कि वो स्वतंत्र रूप से काम उन्होंने किया, जो चीजें चाहिए थी जैसे होना चाहिए था उस तरह से लिया उन्होंने और अब कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर के आ गया। और एक ऐसे समय में जबकि बाकी जगह पर कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है, इसका मतलब यह हुआ कि यही रियल डेमोक्रेसी है और हमारे जो राज्यों का जो नेतृत्व है वह वहां के लीडर्स के हाथ में होना चाहिए, राइट। ये पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, कि कैसे आप पॉलिटी को समझेंगे। दूसरी ओर आप देखिए कि अब हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आते हैं कि यहां भी अगर हाईकमान चाहती तो बड़े आराम से अपना आदमी भेज सकती थी। जैसे मनोज सिन्हा जी का नाम चल रहा था, वो भी सेंटर में मिनिस्टर हैं। आपने अखबारों में राजनाथ सिंह जी का भी नाम पढ़ा ही, वो हमारे गृहमंत्री थे। जो भी रीजन रहा हो, वो अब वो राजनीति की बात है, वो हमारे काम के नहीं है। लेकिन आपने देखा कि जो व्यवस्था अपनाई गई वो क्या व्यवस्था थी कि ठीक है सेंटर से पर्यवेक्षक जाएंगे, वो लोग वहां रहेंगे, लेकिन वहां के लोगों को ही अपना लीडर चुनना है। उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं डिसाइड करें कि कौन उनका लीडर होगा और उत्तराखंड के जो एमएलएज हैं वो डिसाइड करें कि उनका अपना लीडर कौन होगा। और इस पैटर्न पर वहां दोनों जगह मुख्यमंत्री का निर्वाचन हुआ। ये एक सही मायने में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। देखिए अंदर की बात पे मैं नहीं जा रहा हूं, अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेंगी चीजें मिलेंगी कि वो अमित शाह जी के आदमी है या वो नरेंद्र मोदी जी के आदमी है या वो आरएसएस के आदमी है ना, वो एक अंदरूनी चीज है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम तो उस पैटर्न पर जा रहे हैं कि हाई कमान ने सीधे सीधे कहा कि आप चुनिए और फिर उन लोगों को छूट दे दी गई और फिर उन लोगों ने इतना समय लगाया और उसके आधार पर फैसला कर लिया। तो बट नेचुरल है कि अब जो वहां के चीफ मिनिस्टर होंगे उनकी अपने लोगों पर पकड़ होगी क्योंकि उनके अपने ही लोगों की पसंद है, तो वो जितना अच्छे से नेतृत्व कर सकेंगे उतना हाईकमान के द्वारा थोपा गया चीफ मिनिस्टर नेतृत्व नहीं कर सकता। तो मित्रों ये है पॉलिटी, क्योंकि अगर विद इन द एमएलए वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? चयन की सुविधा। अगर पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होगी तो फिर एक डेमोक्रेटिक सेटअप को चलाने की, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को चलाने की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? तो डेमोक्रेसी तो बेसिकली एक जीवन प्रणाली ही अपने आप में है, तो वो यहां आपको दोनों जगह पर दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके बाद जो एक छोटी सी खबर थी वो थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत को हम रत्न आभूषण का केंद्र बनाना चाहेंगे। मतलब कोशिश हो रही कि भारत जो रत्न और आभूषण है उसका केंद्र बने और भारत बन सकता है। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को ध्यान होगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय मैंने बताया था कि भारत की अभी जो सबसे बड़ी जो ताकत है वह है इसकी श्रम शक्ति। हमारे पास श्रम शक्ति न केवल संख्या में बहुत ज्यादा है बल्कि हम धीरे धीरे स्किल्ड भी होते जा रहे हैं और सस्ता भी, हम श्रम शक्ति भी हमारे यहां सस्ती भी बहुत है। इसीलिए ऐसी चीजें जिसमें श्रम का योगदान ज्यादा होगा भारत उसमें विश्व स्तर पर सबसे आगे खड़ा दिखाई देगा, भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। जैसे अब आभूषण ऑर्नामेंट्स में आप देखिए कि अब हाथ से कारीगरी से काम हो रहा है, मतलब श्रम इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कि गोल्ड हम बेचें तो आगे ना निकले, लेकिन अगर गोल्ड को हम आभूषण में कन्वर्ट करके बेचेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे क्योंकि हमारे यहां श्रम शक्ति बहुत सस्ती है। इस तरह से रेडीमेड कपड़े के मामले में हम बहुत आगे विश्व मार्केट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर सिले सिलाए कपड़े के मामले में हम देखेंगे तो हम विश्व में बहुत आगे निकल जाएंगे क्योंकि उसमें श्रम इन्वॉल्व है, कपड़े को काट करके सिला गया। इसी तरह से लेदर वर्क में भी आप देखिए, भले ही हम बाहर से लेदर मंगा करके और उसके जैकेट और जूते बना करके बेच रहे हो, लेकिन हमारा मुकाबला दुनिया के दूसरे देश नहीं कर सकते। तो यहां इसके केंद्र में जो श्रम आभूषण की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है भारत को केंद्र बनाने की, वाकई में ये बहुत ही संभावनाओं वाला क्षेत्र है। और संभावनाओं वाला क्षेत्र इसलिए है जो आपको जानना है स्पेशली क्योंकि इसमें श्रम इन्वॉल्व है और भारत में श्रम अवेलेबल है और बहुत ही सस्ती कीमत पर अवेलेबल है, जो भारत की अभी वर्तमान में बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। ये बहुत बड़ी उसकी आर्थिक क्षमता है। तो दोस्तों ये दो न्यूज इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो छोटी खबरें थी। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स आज के न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के न्यूज पेपर्स क्लिपिंग्स गिनी दुनी दो तीन क्लिपिंग्स हैं, कुछ विशेष है नहीं। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपसे बात करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। एक क्लिपिंग्स है राष्ट्रीय सहारा की मालदीव पर, मालदीव पर मैं आपको एक क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं जो संडे के अखबार में छपा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग है। और मालदीव के माध्यम से मैं आपको अब कुछ तैयारी करने के तरीके बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स आपका जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है मेंस का, उसमें आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मानकर के चलिए कि चार पांच क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, मतलब 250 में से 50 नंबर के क्वेश्चंस आप मान करके चलिए कि 20% क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर होते हैं। अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैं यहां उस बात की चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट जरूर करूंगा, राय जरूर दूंगा, और बहुत ही विनम्र राय है कि प्लीज आप कुछ आप जो सिलेबस है सेकेंड पेपर का, उस सिलेबस को देखिए जाकर के, और सिलेबस में स्पेशली उस हिस्से को देखिए जहां से इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत होती है। बकायदे उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी आप किन किन पॉइंट के आधार पर करेंगे। वहां आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके संदर्भ में होना चाहिए, और खासकर जो हमारे पड़ोसी देश है उनके संदर्भ में होना चाहिए, वहां बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। इसको आपको ध्यान इसलिए देने की बात मैं कह रहा हूं दोस्तों इस पर, क्योंकि अदरवाइज आप बहुत ज्यादा भटकने लगते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लो, उसके बारे में भी पढ़ लो, और जैसा कि कहा भी जाता है कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, क्योंकि बताने वाले को ये लगता है कि कुछ छूटे ना और हम बता सकें कि भैया हमने तो कहा था, जबकि सच ये है कि उतने कहने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिलेबस कोर्स है बहुत ही डिफाइंड है, उस डिफाइंड कोर्स में मालदीव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उस सिलेबस में मेंशन किया हुआ है नेबर कंट्री। मालदीव तो हमारे बिल्कुल नेबर में ही है, बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही है, जैसे श्रीलंका पड़ोस में है, ऑलमोस्ट उतना तो नजदीक नहीं है, लेकिन मालदीव भी हमारे पड़ोस में है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब मैं बात करता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, तो मैं हमेशा अनसॉल्व्ड पेपर को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, और इसकी बात मैं आप स्टूडेंट से कहता भी हूं। तो अगर मुझे तैयारी करनी होगी तो मैं जब अनसॉल्व्ड पेपर देखूंगा तो 2013 में मुझे मालदीव पर सीधे सीधे एक क्वेश्चन मिलता है जो पूछा गया था, और पूछा यह गया था, मैं उस प्रश्न को पढ़ूंगा इसलिए ताकि मुझे पता लग सके, क्योंकि मालदीव टॉपिक इंपॉर्टेंट है मुझे पता लग गया, लेकिन अब मुझे यह भी तो देखना है ना कि मालदीव का जो टॉपिक है उसको मुझे किस एंगल से कवर करना है, परीक्षा के दृष्टि से मुझे क्या पढ़ना चाहिए, नहीं तो मालदीव तो अपने आप में फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। 70 साल का आखिर में हमारे आजादी का इतिहास है ही, और मालदीव पर भी ब्रिटेन का अधिकार था, भारत पर भी ब्रिटेन का अधिकार था, तो अब कितना पढ़ेंगे। तो सिलेबस को देखने के बाद मैं अनसॉल्व्ड पेपर पर जाऊंगा, और अनसॉल्व्ड पेपर में मुझे क्वेश्चन मिलता है मालदीव पर, वो ये है कि मालदीव में पिछले 2 वर्षों में, यानी कि 2013 में पूछा गया है, यानी कि 2011 से लेकर 13 तक पिछले 2 वर्षों में हुई राजनीतिक घटनाओं की विवेचना कीजिए, यह बताइए कि क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है, 200 शब्दों में। अब आप देखिए कि कितना सरल प्रश्न है, और सरल से भी बड़ी बात है कि कितना प्यारा प्रश्न है। यस, प्यारा प्रश्न है। 2 साल में हुई घटनाओं, उन 2 साल के दौरान मालदीव में राष्ट्रपति को लेकर के बहुत ज्यादा उथल पुथल रही है कि एक राष्ट्रपति पर आरोप लगाया गया, उनको वहां से हटाया गया, वहां से भागे, भारत में शरण लिया, फलाना हुआ, इस तरह की उस समय की घटनाएं हैं, चूंकि अभी आपको याद नहीं रहेंगी, उस समय ये घटनाएं हुई थी, और चूंकि भारत उसमें इन्वॉल्व था, मतलब भारत का तो होना ही था क्योंकि उन्होंने भारत में शरण ली थी, कुछ ऐसी स्थिति हुई थी, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो तो पड़ोस में ही हमारे जब हो रहा है तो भारत के लिए वो चिंता का विषय होगा ही। तो अब आप देखिए कि बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो मैं अब इसके आधार पर डिसाइड क्या करूंगा फ्रेंड्स, सिलेबस और अनसॉल्व्ड पेपर के आधार पर अब मेरा डिसीजन क्या होगा, मतलब मेरा रोड मैप क्या होगा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। मेरा रोड मैप ये होगा कि नहीं, पड़ोसी देशों पर मुझे तैयारी करनी है, उसमें मालदीव एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को लेकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट है, और उस क्वेश्चन में भारत डेफिनेटली इन्वॉल्व है कि भारत क्या कदम उठा रहा है, भारत के लिए क्यों चिंता का विषय है, भारत को और क्या कदम उठाने चाहिए, ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैं निष्कर्ष निकालूंगा और अपने इस निष्कर्ष को प्रूफ करने के लिए या चेक करने के लिए मैं और कुछ दूसरे प्रश्न जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए पढ़ लूंगा, और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ प्रश्न तो इसी तरह के पूछे जाते हैं। बात खत्म हो गई, मेरा काम बन जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से मैं अपने सिलेबस को लेकर के और अपने अनसॉल्व पेपर को लेकर के अपने भविष्य के परीक्षा की तैयारी के लिए रणनीति तैयार करूंगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, मैं मालदीप पर जो भी सामग्री अवेलेबल है वो उठाऊंगा और उन्हें समझने की कोशिश करूंगा, और मैं इसकी शुरुआत करूंगा डेफिनेटली मैप से कि मालदीप की लोकेशन कहां है, और इसके बाद उनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं केवल उनको आइडेंटिफाई करूंगा जो मेरे क्वेश्चन के आंसर से मैच करते हैं। बस मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा कि अगर वहां 2008 में कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, नथिंग। मैं बहुत सिंपल से जानना चाहूंगा कि जो मालदीव है कहां स्थित है, तो पता लगेगा कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है लेकिन सिचुएटेड अरबियन सी में है। देखिए दोस्तों, यहां पर मेरी बात थोड़ी सी आपको अटपटी सी लगी होगी, और यहां मैं आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना भी चाहूंगा, जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन किया हुआ है लोकेटेड इन द इंडियन ओशन सिचुएटेड इन द अरबियन सी, तो आपको लगेगा कि दो महासागर एक साथ कैसे हो सकते हैं। सच जो फैक्ट ये है कि जो अरबियन सागर है वो इंडियन ओशन का हिस्सा है। तो अगर हम बड़े हिस्से की बात करें वो लोकेशन लोकेट कहां है, तो बटने चल रहे कि वो इंडियन ओशन में लोकेटेड है, लेकिन सिचुएटेड कहां है मतलब स्थित कहां है, तो उस इंडियन ओशन जो बहुत बड़ा ओशन है उसका जो अरबियन सी है, अरबियन सी वाला पार्ट है, उसमें मालदीव है। ये मैं अच्छे से समझ लूंगा, नक्शे में लोकेट कर लूंगा ताकि और घटनाएं समझने में मुझे आसानी हो। फिर मैं विभाजन करने में देखूंगा कि नहीं ये ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंध में आता है, मुझे समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं जब देखूंगा तो बड़े आराम से वो दिखाई दे जाएगा कि 8 डिग्री अक्षांश के आसपास है। इस बात को मेरे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि 8 अंश अक्षांश में अगर वो स्थित है, उसके आसपास स्थित है, उसका क्या मतलब होगा ट्रॉपिकल में है। भारत के किस दिशा में है तो पता लगेगा कि भारत के साउथ वेस्ट में है। मैं इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि प्री में भी पूछ लिया जाए, तो भारत के साउथ वेस्ट में है, लेकिन एशिया के कहां होगा तो साउथ एशियन आइलैंड कहलाएगा ये। इन सब चीजों को मैं बहुत क्लियर कर लूंगा। थोड़ा सा मैं जान लूंगा कि यहां राजधानी माले है और पर्यटन यहां का सबसे बड़ा उद्योग है, इस्लाम यहां का मूल धर्म है, 1965 में ये यूके से आजाद हुआ है, 2008 में इसका भी नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, उसी के बाद से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया उससे रिलेटेड। उसकी जो आबादी है 40 लाख के करीब, बहुत ही छोटा सा देश है, 40 लाख की आबादी है, और मैं यहां गया हुआ हूं, मालदीव गया हुआ हूं। आप एक साइकिल लेकर के पूरे देश का भ्रमण कर सकते हैं, छोटा सा देश है। इतना सब जान लेने के बाद अब फिर मैं अभी की स्थिति पर आऊंगा जो आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इस बैकग्राउंड में मित्रों, अब आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा और उन पॉइंट्स को निकालने की कोशिश कीजिएगा जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर तरीके से समस्या का समाधान निकाल दें। इस समस्या का जुड़ाव इस बात से है कि सऊदी अरब के जो शाह हैं वो अभी मालदीव जाने वाले थे, उन्होंने अपना टूर कैंसिल कर दिया है। बस उस टूर के जाने से क्या फर्क पड़ता, टूर के कैंसिल होने से अब क्या फर्क पड़ जाएगा भारत के संदर्भ में, इसको लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यह आर्टिकल लिखा गया है। अब यह काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स से भी बस आज इतना ही। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, ईमेल का, जो ईमेल का चरण है, तो सभी अपने ईमेल लिखने वाले अपने साथियों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम ले रहा हूं, वो हैं अमित कुमार, शुभम टोपनवार, हनी सिंह, कुंदन निराला, राहुल जयकर, विक्की प्रजापत, सतीश सिंह, शक्तिवर्धन सिंह धोनी, उर्मी नैन, माधव सिंह, काजल भारती पटना से, अंकित वर्मा, इरफान सैफी, यश सोलंकी अहमदाबाद से, तरुण अग्रवाल, हितेश सिंह और घनश्याम वर्मा। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।